अध्याय 10 स्कूल मनोविज्ञान स्कूल साइकोलॉजिस्ट शैक्षणिक समस्याओं से संबंधित अध्ययन सामग्री तथा अध्यापकों के लिए निर्देश का कार्य निर्धारित करने में परामर्शी मनोविज्ञान की सहायता अपेक्षित होती है। यह मनोविज्ञान उन अधिकारियों को भी सहयोग करते हैं जो बच्चों के व्यक्तित्व आवश्यकताओं से संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हैं। उनके प्रशिक्षण एवं निदान नैदानिक एवं प्रतिकारी कार्य तथा व्यक्ति इतिहास अध्ययन के अनुभव उनमें अपेक्षित सुडा एवं तकनीक कौशल प्रदान करते हैं। उनके इस सुडा और कौशल का उपयोग छात्रों की समस्याओं को समझने में किया जाता है। शिक्षा विभाग द्वारा कई राज्यों एवं समुदाय में प्रशिक्षित एवं अनुभवी स्कूल मनोविज्ञान की व्यवस्था की गई है। बच्चों के उच्चारण संशोधन अभिभावक विचार विनिमय तथा मानसिक न्यूनता जैसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। व्यवहारिक विद्यालयों विशिष्ट विद्यालयों एवं कक्षाओं में नर्सरी स्कूलों एवं स्वायत्त संस्थाओं में इन मनोवैज्ञानिकों की विशेष आवश्यकता होती है। अनुदेश और सहयोग बच्चों के संबंध में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने में स्कूल मनोवैज्ञानिक शिक्षक का सहयोग करते हैं। प्रत्येक विद्यालय में निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट सेवाओं एवं कार्य निष्पादनों की आवश्यकता होती है जिसकी विशेष सामग्री की खोज केवल स्कूल मनोवैज्ञानिक ही कर सकते हैं। स्कूल मनोवैज्ञानिक निदानात्मक व्यक्तित्व अध्ययन विधि द्वारा बच्चों के मानसिक विकारों का निदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता से वे बच्चों की परीक्षा करके तथा उसके द्वारा परिणामों की व्याख्या करके अपनी अनुशंसाएँ करते हैं। वे संपूर्ण बालक समुदाय के संदर्भ में बालक विशेष के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। बच्चों के कल्याण के लिए अपेक्षित सामाजिक संसाधनों से वे पूर्णतः परिचित रहते हैं। विद्यालय क्रिया प्रणाली के संदर्भ में उसकी जानकारी शिक्षक तथा प्रधानाचार्य की तुलना में अधिक रहती है। वे बच्चों के समायोजन संबंधी मामलों में प्रधानाचार्य शिक्षक तथा अभिभावक के बीच संपर्क अधिकारी का कार्य करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि परामर्शी मनोवैज्ञानिक एक विशिष्ट अनुपूरक कर्मचारी के रूप में आधुनिक विद्यालयों की सेवा करते हैं। पिछले कुछ समय में शिकागो सार्वजनिक स्कूल प्रणाली में समायोजन शिक्षक सेवा का अभ्युदय हुआ जिसके अंतर्गत छात्र समायोजन से संबंधित समस्याओं के लिए परामर्शदाता के रूप में मनोवैज्ञानिकों की सेवा ली जाती है। ये मनोवैज्ञानिक बाल अध्ययन विभाग के केंद्रीय कार्यालय में काम करते हैं और वहाँ के विभागाध्यक्ष से प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये स्कूल मनोवैज्ञानिक बच्चों की क्षमताओं एवं उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए उनकी कमजोरियों एवं उनकी शिक्षण योग्यता का मूल्यांकन करते हुए समूह में उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजनों का विश्लेषण करके व्यक्तित्व रूप से उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। मनोवैज्ञानिक बच्चों के प्रति प्रतिक्रियाएं, संवेगों पठनीय योग्यताओं भाषा कौशल तथा कला में उनकी अभिरुचि का मूल्यांकन करते हैं तथा साथ ही साथ समस्याग्रस्त बच्चों की विशिष्ट अध्ययन करते हैं। यहाँ बच्चों की कुछ शैक्षणिक समस्याओं का वर्णन करना वांछित है जिसका निराकरण स्कूल मनोवैज्ञानिकों के सहयोग के द्वारा ही संभव होता है। शैक्षिक समस्याओं के लिए अपेक्षित मनोवैज्ञानिक सेवाएं विद्यालय की प्रत्येक कक्षा की शैक्षणिक समस्याओं के समाधान हेतु स्कूल मनोवैज्ञानिकों को सेवा ली जाती है। शिक्षण एवं समायोजन से संबंधित समस्याग्रस्त बालकों का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। धीमी गति से शिक्षण करने वाले मूड एवं मानसिक विकृति के बालक मूड सामान्य बच्चों और मतिमंदों का अध्ययन उनकी कक्षा और घरेलू पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए। शैक्षणिक समस्याओं के कारण कुछ प्रतिभाशाली बच्चे भी स्कूल में धीमी गति का अपना अध्ययन करते हैं। बुद्धि परीक्षा करने पर उनकी बुद्धि उपलब्धि 70 से 90 के बीच पाई जाती है। इस संदर्भ में संपादी के एक अध्ययन में देखा गया है कि इटली का निवासी रिकार्डो नामक बच्चा, जिसकी उम्र 9 वर्ष थी तथा बुद्धि उपलब्धि 88 थी, 4 वर्ष स्कूल में पढ़ने के बाद भी वह द्वितीय श्रेणी के बच्चों की ही योग्यता रखता था। यद्यपि वह एकार्ग चित और पढ़ने के प्रति बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, किंतु उसमें साहस की कमी थी। उसकी हीन मानसिकता एवं दुर्बल घरेलू पृष्ठभूमि उसकी योग्यता को प्रभावित करते थे। उसके अध्यापक उसे सुस्त की संज्ञा देते थे। मौली नामक एक लड़की, जिसकी बुद्धि उपलब्धि 99% थी, वह अपने साथी बच्चों की तुलना में कुछ अच्छा नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसके शिक्षक उसे हठी मानते थे। बच्चों की मानसिक क्षमताओं से संबंधित इस प्रकार की समस्याएं प्राय प्रत्येक विद्यालय तथा श्रेणियों में विद्यमान रहती है, जिसके समाधान के लिए विशिष्ट सरलीकृत पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है, जो बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करते हैं और उनकी सुस्ती तथा हठवादिता से मुक्ति दिलाने में सहायता करते हैं। व्यवहार समस्याएं। व्यवहारिक समस्याओं के अंतर्गत बच्चों में व्याप्त काम चोरी की प्रवृत्ति, बाल अपराध, आक्रामकता, चिल्लाने की प्रवृत्ति, लड़ने झड़ने की आदत, छेड़छाड़, दुष्निश्चिंता, उन्माद, शारीरिक क्रूरता, अशिष्ट भाषा का प्रयोग, उत्पीड़क व्यवहार एवं विश्वास की कमी इत्यादि कमजोरियां या बुराइयों का सामना स्कूल मनोविज्ञान को करना पड़ता है। इन समस्याओं की उत्पत्ति की जिम्मेदारी बहुत कुछ अभिभावकों की होती है। वे कभी कभी बच्चों को आवश्यकता से अधिक संरक्षण प्रदान करते हैं तथा बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, जो कुछ इस प्रकार की समस्याएं पैदा करने में सहायता होता है। बंकी नामक बच्चे को सभी लोग कामचोर रूप से जानते थे। उसके पिता भी उसे अच्छा नहीं समझते थे। हालांकि वह एक विजयी व्यक्तित्व वाला तेज तर्रार बच्चा था। वह प्रतिदिन गोदी तक भ्रमण करता था और बड़ी बड़ी नौकाओं को देखकर एवं समुद्री नाविकों की किंवदंतियां देख सुनकर अपनी मनोरंजन किया करता था। मार्सिया नामक एक लड़की अपनी कक्षा के अन्य बच्चों में लोकप्रिय नहीं थी। वह अपनी कक्षा के लड़के लड़कियों से घृणा करती थी तथा वो कहती थी कि वे उसके मित्र नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ वह अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। व्यवहार एवं व्यक्तित्व समायोजन संबंधी इस प्रकार की समस्याओं का समाधान घर, विद्यालय, पड़ोस एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग या स्कूल तथा उन संस्थाओं में कार्यरत विशेषज्ञों के सहयोगात्मक प्रयासों द्वारा संभव है। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान में स्कूल मनोवैज्ञानिक स्कूल के कर्मचारियों का सहयोग करता है। वह स्कूल में उपस्थिति के निर्धारित प्रतिमानों, स्थानीय बाल कल्याण अधिनियम आदि की जानकारी हासिल करके अपने विश्लेषणों द्वारा इन समस्याओं का स्थायी हल ढूंढता है। तीसरा, विद्यालय में पिछड़ना। मानसिक रूप से प्रतिभावान एवं ड्राइंग तथा निर्माण कार्य में प्रवीण चौल्स नामक लड़का अपनी कक्षा में अन्य सभी पाठ्य विषयों में पीछे रहा करता था। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि अच्छे एवं प्रतिभाशाली बच्चे भी कभी कभी अपनी पाठ्य विषयों को अच्छी प्रकार से कंठस्थ नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में उनके शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ विशिष्ट प्रविधियों का प्रयोग करता है। पहले वे उनकी मानसिक योग्यताओं की जांच करता है और उसके बाद बच्चा जिस क्षेत्र में निपुण होता है उसे उसी क्षेत्र में शिक्षा का व्यवहार करता है। चौथा, पठन अयोग्यता। कुछ बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। मूल रूप से इन कठिनाइयों का संबंध इसके व्यक्तित्व जनित समस्याओं से होता है, जिनके कारण उनमें मानसिक शून्यता, चाक्षुष और शोभ विकार या तंत्रिका तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ विशिष्ट प्रविधियों का उपयोग करते हैं। हैरी नामक एक बच्चा इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त था। 11 वर्ष की उम्र तक वह पढ़ने में असमर्थ था अथवा सही ढंग से कुछ भी नहीं कर पाता था। कालांतर में उसे उस स्कूल में भर्ती कराया गया जहां मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग करके उसकी कमजोरियों के बीच की जांच की गई तथा बुद्धिमान के लिए बने परीक्षण का प्रयोग किया गया। व्यक्तिगत सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उसकी सभी समस्याओं का निदान एवं उपचार किया गया। 6 सप्ताह के बाद यह देखा गया कि उसके पढ़ने की क्षमता में पर्याप्त सुधार हुआ। वह प्रथम श्रेणी स्तर तक एक स्नातक की विषय वस्तुओं को भली भांति पढ़ लेता था। इस प्रविधि को आगे भी जारी रखा गया। 1 वर्ष बाद उसकी यह क्षमता बढ़कर 3रे श्रेणी स्तर तक की पहुंच गई और वह 3री श्रेणी के लिए निर्धारित विषय सामग्री को अच्छी प्रकार से पढ़ना सीख गया। 5वां, शारीरिक विकलांगता। शारीरिक रूप से विकलांग जैसे अंधे तथा बहरे बच्चों की मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं शैक्षणिक निर्देशनों के लिए स्कूल मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है। बच्चों में विद्यमान भाषा विकार, उच्चारण विकार तथा अन्य विकारों के निदान एवं उपचार में विशिष्ट शैक्षणिक एवं चिकित्सीय प्रविधियों का उपयोग करते हुए मनोवैज्ञानिक स्कूल के डॉक्टरों और नर्सों की सहायता करता है। 6वां, प्रतिभाशाली बालक। शैक्षणिक परिक्षेत्र में यह सामान्य अवधारणा प्रचलित है कि प्रतिभाशाली बालक दूसरे बच्चों की बातों का ध्यान नहीं रखते। वे अपने को स्वतः परिपूर्ण मानते हैं, किंतु यह विचारधारा पूर्णतः सत्य नहीं है। ऐसे बच्चे पूर्णतः विकृत नहीं होते और ना तो ये कक्षा में व्यवधान पैदा करते हैं। इनकी समायोजन संबंधित समस्याएं प्राय स्पष्ट रहती हैं। ऐसे बच्चे अपनी क्षमता से कम काम करने वाले होते हैं। अपने थोड़े प्रयासों द्वारा वे शिक्षकों को प्रसन्न कर देते हैं और विस्तृत विषयों पर ध्यान देते हुए भी इन बच्चों को सीमित अभिरुचि का विकास होता है। स्कूल मनोवैज्ञानिक इस प्रकार के बच्चों की क्षमता और अभिकौशल का पता लगाकर शिक्षकों और अभिभावकों से परिचित कराते हैं तथा उसके विकास के लिए स्वस्थ साधनों की अनुशंसा करते हैं। वातावरण समायोजन। बच्चों से संबंधित उपयुक्त समस्याओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वातावरण समायोजन की मुख्य मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु होनी चाहिए। बच्चों के शैक्षणिक जीवन का उनके समायोजन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शिष्य शिक्षक संबंध में बढ़ोतरी। बच्चों के वातावरणीय समायोजन में शिष्य शिक्षक संबंध एक महत्वपूर्ण कारक है। साक्षात्कार और सम्मेलनों के द्वारा मनोवैज्ञानिक शिक्षक शिष्य द्वंद्व के कारण की खोज करते हैं। बच्चों के अभिक्षमताओं एवं व्यवहारों को समझने में मनोवैज्ञानिक शिक्षकों तथा अन्य स्कूल कर्मचारियों का सहयोग करता है और कुछ प्रायोगिक सुझाव से शिक्षकों को अवगत कराता है, जो शिष्य समस्याओं के प्रभावपूर्ण समाधान में शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। प्रत्येक बच्चे के शिक्षण और समायोजन के लिए उपयुक्त मापदंडों का निर्धारण करने में मनोवैज्ञानिक शिक्षकों का सहयोग करता है। वह बच्चों की योग्यताओं कक्षा समूह में उसकी स्थिति एवं कक्षा के अन्य बच्चों से उसके संबंध का मौखिक एक लेखाचित्र जानकारी शिक्षकों को उपलब्ध कराता है। दूसरा, पाठ्यक्रम समायोजन। जिन बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक पद्धतियाँ आवश्यक होती हैं, उनके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में मनोवैज्ञानिक शिक्षक तथा अन्य स्कूल अधिकारियों की सहायता करता है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की कठिनाइयों को उसे विशिष्ट कक्षा समूह में रखकर अध्ययन करने का अवसर दिया जाता है। उसके पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करके उसमें लचीलेपन का समावेश किया जाता है। शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों का मनोनयन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। मानसिक न्यून प्रतिभाशाली या अन्य समस्याग्रस्त बच्चों का पूर्ण वर्गीकरण करके उनके लिए विशिष्ट या संशोधित कक्षाओं की व्यवस्था में स्कूल मनोवैज्ञानिक शिक्षकों का सहयोग करता है। नियमित कक्षाओं में लचीला उपसमूहीकरण किया जाता है, जिसमें प्रत्येक बच्चों के यथोचित निर्देशन दिया जा सके। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपचार विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बच्चों के शैक्षणिक प्रगति में मनोवैज्ञानिक शिक्षकों की सहायता करता है तथा उनके लिए प्रतिपादित विशिष्ट शैक्षणिक उपादनों के प्रभाव की जांच भी करता है। तीसरा, अभिलेखों द्वारा बच्चों का अध्ययन। स्कूल की सेवा एवं शोध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मनोवैज्ञानिक प्रत्येक बच्चों के संचयी अभिलेखों के रखरखाव में स्कूल कर्मचारियों की सहायता करती है। आधुनिक स्कूल में बच्चों के व्यवहारिक समस्याओं के निर्धारण में इन सच्चाई अभिलेखों पर विचार ध्यान दिया गया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर बच्चों के संपूर्ण विकासात्मक इतिहास का परीक्षण किया जा सके। अध्यापक अपनी कक्षा में बहुत कम समय के लिए ही शिष्यों के संपर्क में आता है और सामान्यतः उसी संपर्क के माध्यम से उसे के विषय के जानकारी प्राप्त करता है, जबकि मनोवैज्ञानिक विविध रूप से इन बच्चों में घनिष्ठ संपर्क बनाए रख सकता है। प्रत्येक अध्यापक के सम्मुख उसके शिष्यों की संपूर्ण विकासात्मक संचयी तस्वीर प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिकों का एक प्रमुख कार्य है, जिसके लिए वह विशिष्ट स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बच्चों की प्रगति का अविच्छिन्न अभिलेख तैयार करता है। घर तथा विद्यालय के संबंध में मजबूत बनाना। अभिभावक सम्मेलनों बच्चों एवं उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की सही जानकारी से शिक्षक को अवगत कराना एवं अभिभावकों को दिए जाने वाले बच्चों की रिपोर्ट भेजने में शिक्षक की सहायता करके मनोवैज्ञानिक घर तथा स्कूल संबंध को अधिक मजबूत बनाता है। वह सूचना परक बुद्धि परक तथा विस्तृत रिपोर्ट कार्ड बनाने में शिक्षकों की मदद करता है। व्यक्तिगत और अभिभावक शिक्षक सम्मेलनों के माध्यम से स्कूल मनोवैज्ञानिक अभिभावकों के संपर्क में आता है। अभिभावक उनसे बच्चों की अनुशासन संबंधी समस्याएं, उनके कार्य आदतों तथा बच्चों के विकास के उपयुक्त मानकों एवं लक्ष्यों के संबंध में मनोवैज्ञानिकों से जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों में व्याप्त पारिवारिक ईर्ष्या की भावना तथा बिगड़े बच्चों की समस्याओं के निराकरण हेतु अभिभावक मनोविज्ञान की सहायता लेते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे बच्चे जो स्कूल जाने योग्य नहीं होते, उनके मार्गदर्शन में भी स्कूल मनोविज्ञान की सहायता ली जाती है। स्कूल उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक। यदि हम किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों के अंकपत्र का निरीक्षण करें तो हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक बालक के नंबरों में अंतर होता है। कुछ बालक बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, तो कुछ फेल भी हो सकते हैं। अधिकतर छात्र सामान्य श्रेणी के अंक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार छात्रों के स्कूल उपलब्धियों में व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है। आगे हम उन तत्वों की चर्चा करेंगे जो छात्रों के स्कूल उपलब्धियों को प्रभावित करते हैं। पहला, शिक्षार्थी की क्षमता। प्राय यह देखने को मिलता है कि विभिन्न बच्चों की शिक्षण उपलब्धि में विभिन्नता पाई जाती है। कोई बच्चा किसी एक विषय में बहुत अच्छा निष्पादन करता है, किंतु अन्य विषयों में उसका सराहनीय नहीं होता। बच्चों के निष्पादन में इस प्रकार के व्यक्तित्व विभिन्नता के लिए उनकी व्यक्तिगत क्षमता को एक आवश्यक कारक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ कुछ कारकों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके आधार पर बच्चों की अपेक्षित क्षमता का पता लगाया जा सकता है, जो उनमें व्याप्त व्यक्तित्व वैभिन्न्य के आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं। पहला, बुद्धि। विभिन्न उम्र स्तर के व्यक्तियों में बौद्धिक विकास की मात्रा में पाया जाने वाला अंतर सभी अभिभावकों, शिक्षकों, बोर्डों, यहाँ तक कि बच्चों द्वारा भी निर्विवाद रूप से सत्य माना जाता है। प्राय यह देखने को मिलता है कि कुछ व्यक्ति या बच्चे अत्यंत प्रभावशील होते हैं एवं मेधावी होते हैं, कुछ अत्यंत मंदबुद्धि एवं मूर्ख होते हैं। कोई लड़की अपने पारिवारिक परिवेश के कारण 3 वर्ष की अवस्था में ही यदि कविता पाठ करना आरंभ कर देती है तो उसकी माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। दूसरे लोग भी उसकी इस क्षमता की प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत यदि कोई 3 वर्ष का बच्चा सही ढंग से शब्दों का उच्चारण करने में भी असमर्थ रहता है तो उसके माता पिता स्वाभाविक रूप से चिंतित हो जाते हैं। दूसरे लोग उस बालक को मंदबुद्धि बालक की संज्ञा देते हैं, किंतु वस्तुतः यह सत्य नहीं होता। बालक के किसी विशेष गुण के आधार पर ही उसको प्रतिभावान या मंदबुद्धि के रूप में वर्गीकृत करना न्यायसंगत नहीं। तथ्य यह है कि बच्चों की मानसिक योग्यता में भेद होता है। हो सकता है कि उम्र के विकास के साथ बच्चे का मानसिक विकास भी उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। मंदबुद्धि मापन की उचित प्रविधियों एवं उनकी सम्यक व्याख्या के सहयोग से मनोविज्ञान ने बच्चों के मानसिक योग्यता पर उसका वर्गीकरण करके संपूर्ण मानव जाति को अत्यधिक लाभ पहुंचाया है। मनोविज्ञान की सहायता से हम इस तथ्य से परिचित हो सकते हैं कि अनुमुख बच्चा बहुत कम उम्र में ही अपने से उच्च स्तर की सामग्री को कैसे बहुत आसानी से कंठस्थ कर लेता है, या कोई 10 वर्षीय बालक प्रारंभिक स्तर की शिक्षक सामग्री का आत्मसात करने में असमर्थ रहता है। मनोविज्ञान ने ऐसी बहुत सी मानसिक परीक्षणों को जन्म दिया है जो बच्चों एवं व्यक्तियों का वर्गीकरण उनकी सहज बुद्धि के आधार पर करती है। व्यक्ति की बुद्धि मापने की प्रविधियों का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में वुंट महोदय, इंग्लैंड में गॉल्टन और अमेरिका में कैटल के विषयों से आरंभ हुआ था। इन मनोविज्ञान ने अपने अध्ययनों में यह पाया कि साधारण कार्यों के निष्पादन में विभिन्न बच्चों की गति एवं शुद्धता की मात्रा में पर्याप्त अंतर था। इंग्लैंड में डार्विन और गॉल्टन ने वंशानुक्रम की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके व्यक्ति योग्यता मापन की प्रविधियों के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। योग्यता मापन की दिशा में सर्वप्रथम चाक्षुष एवं श्रोत संवेदनाओं एवं प्रतिक्रिया काल जैसे साधारण योग्यताओं के माप के लिए कुछ परीक्षण विकसित किए गए थे। जर्मनी में एविंगहाउस महोदय ने स्मृति के अध्ययन के दौरान सीखने और भूलने की मापन प्रविधि को जन्म दिया। वाक्यपूर्ति शब्द साहचर्य जैसे कुछ अन्य परीक्षणों का निर्माण करके व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता था। बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास हुआ उसका श्रेय फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने महोदय को दिया जाता है। बुद्धि मापन की बहुत सी विधियों का समुचित परीक्षण करने के उपरांत बिने महोदय ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसे परीक्षण का विकास किया जिसके द्वारा बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक उम्र में भेद कर सकने में मानसिक उम्र के अनुरूप शिक्षण की अनुशंसा की जा सकती थी। बुद्धि का विकास बुद्धि मापन के लिए निर्मित विभिन्न बुद्धि परीक्षणों के परिणाम से यह स्पष्ट सिद्ध हो चुका है कि बालक की बुद्धि उसके उम्र के साथ साथ बढ़ती है। उसकी मानसिक आयु शारीरिक आयु से कम या अधिक हो सकती है, किंतु वह जन्म से किशोर अवस्था तक बढ़ती रहती है। बुद्धि का विकास किस उम्र में अवरुद्ध होता है इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद नहीं है। फिर भी टर्मेन आदि मनोविज्ञान यह मानते हैं कि 16 वर्ष की अवस्था में अपनी बुद्धि के विकास के चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं। व्यक्ति का मानसिक विकास आजीवन होता है, किंतु इस विकास को बुद्धि की अभिवृद्धि ना मानकर मनोवैज्ञानिकों ने ज्ञान की अभिवृद्धि माना है। ज्ञान को इस अर्जित शक्ति है जो बुद्धि से अलग है तथा उम्र के साथ इसमें विकास होता है। व्यक्ति के सफल जीवन के निर्धारण में बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान है। बुद्धि व्यक्ति के विभिन्न शक्तियों का समुच्चय या संगोलीय अभिक्षमता है जो उसके अभिप्राय पूर्ण ढंग से कार्य करने विवेकशील चिंतन और वातावरण के साथ अभूपूर्व संतुलन को स्थापित करने में सहायक होती है। यह आवश्यक नहीं है जो व्यक्ति अधिक प्रतिभावान और मेधावी है उसे आवश्यक रूप से जीवन में सफलता मिल ही जाएगी। बुद्धि के अलावा कुछ अन्य शक्तियाँ भी होती हैं जो व्यक्ति या बालक के व्यक्तित्व उपलब्धियों के सहायक होती है। दूसरा, अभिक्षमता। सामान्यतः यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करना अधिक पसंद करता है तथा उस विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करना अधिक पसंद करता है तथा इस विशिष्ट क्षेत्र में वह अपनी योग्यता का अच्छा प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। व्यक्ति व्यक्ति में उसकी उपलब्धियों में विभिन्नता होती है। विभिन्न अधिक्षमता परीक्षण कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों को विशिष्ट योग्यताओं का पता लगाकर उसे समुचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए। अभिक्षमता की व्याख्या और कार्य। अभिक्षमता एक गुण के रूप में मानी जाती है जो सभी व्यक्तियों में विभिन्न मात्रा में विद्यमान रहती है। अभिक्षमता का एक सीमित निष्पादन क्षेत्र में वरिष्ठता के विशिष्ट तत्वों के रूप में स्वीकार की जा सकती है। जैसे किसी व्यक्ति का निष्पादन संगीत में अच्छा होता है, किसी का गणित में अथवा कोई प्राविधिक कार्यों में ज़्यादा कुशल होता है। जिस व्यक्ति का निष्पादन संगीत में अच्छा होता है हम कह सकते हैं कि संगीत में अभिक्षमता अधिक है। इस प्रकार अभिक्षमता व्यक्ति विशेष में निहित योग्यता की विशेष घोतक होती है। आरंभ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की इस विशिष्ट योग्यता को मापने के लिए विभिन्न परीक्षणों का प्रयोग किया था। कैटल द्वारा निर्मित पकड़ की शक्ति का रंग का नाम बताना और श्रवण वर्ण विस्तार वर्तमान समय में कहीं कहीं अभी भी किसी विधि के कक्षाओं के बच्चों की अभिक्षमता मापने के लिए प्रचलित है। थाइनाइडाइक का यह सुझाव कि व्यक्ति तीन प्रकार की बुद्धि यथा अमूर्त यांत्रिकी और सामाजिक से युक्त हो सकता है और स्पीयरमैन की बुद्धि के संदर्भ में प्रतिपादित जी और एस तत्वों का सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों की इस अवधारणा की पुष्टि करने की करती है कि व्यक्ति में विशिष्ट योग्यताएं या अभिक्षमताएं विद्यमान होती हैं, जिसके आधार पर उसके बुद्धि निष्पादन की व्याख्या की जा सकती है। व्यक्ति के इस विशिष्ट योग्यता के आधार पर उसके व्यवसायिक क्षेत्र का चयन या निर्देशन मनोवैज्ञानिकों का प्रमुख कार्य होता है। शिक्षार्थी का जिज्ञासु व्यक्ति जिस क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता प्रदर्शन करता है, उसे उस क्षेत्र में कार्य करने की सलाह दी जाती है। अभिक्षमता का अर्थ, अभिक्षमता एक विशेषता या गुण है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का एक घोतक होता है। बिनघम के अनुसार अभिक्षमता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। इसका तात्पर्य यह है कि अभिक्षमता का संबंध व्यक्ति की तत्परता एवं मानसिक झुकाव से है, जो उसे किसी व्यवसाय या कार्य में भावी सफलता के लिए आवश्यक होता है। अभिक्षमता की विशेषताएं। पहला, अभिक्षमता किसी व्यक्ति की भावी क्षमताओं को दर्शाने वाले उसके वर्तमान गुणों का समुच्चय होता है। दूसरा, अभिक्षमता अमूर्त होती है। तीसरा, अभिक्षमता व्यक्ति की रुचि, योग्यता एवं संतुष्टि से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। चौथा, अभिक्षमता में व्यक्तित्व भिन्नता का समावेश रहता है, अर्थात दो व्यक्तियों की अभिक्षमताएं एक समान नहीं हो सकती। अभिक्षमता जन्मजात या अर्जित। अभिक्षमता जन्मजात गुण है या विकास क्रम में अर्जित करने वाली विशेषता। इसे विश्लेषित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। प्राचीन अवधारणा के अनुसार विशिष्ट योग्यताएं व्यक्ति की वे शक्ति या क्षमताएं होती हैं जिसके आधार पर वह जन्म के समय ही प्राप्त कर लेता है अथवा उनमें इनका प्रभाव होता है। यदि संगीत निष्पादन या गणित में उसकी जन्मजात क्षमता अधिक है तो वह बिना किसी विशिष्ट प्रशिक्षण के उस क्षेत्र में सफल हो सकता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति में इस जन्मजात प्रकृति का अभाव है तो प्रशिक्षण के बावजूद भी उनका सफल प्रदर्शन नहीं कर सकता। इस अवधारणा को सर्वमान्य नहीं माना जा सकता है कि क्योंकि अध्ययनों में ऐसे प्रमाण पाए गए हैं कि व्यक्ति में किसी जन्मजात विशेषता का अभाव होने पर भी वह अपने अनुभवों एवं प्रशिक्षणों की सहायता से उस विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षित अभिक्षमता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। व्यक्ति की वर्तमान योग्यताएं जिसे वह स्वतः शिक्षा एवं अपनी सामाजिक अथवा व्यवसायिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से अर्जित करता है, उसकी अभिक्षमताओं को प्रभावित करती है। शिक्षार्थियों की वर्तमान अभिक्षमता की परीक्षा करके भविष्य में उसकी सफलता या असफलता की भविष्यवाणी की जाती है। विभिन्न अभिक्षमताओं परीक्षणों की सहायता से उसकी अभिक्षमता मापन किया जाता है। उसके अभिक्षमता अंक के आधार पर यथोचित अध्ययन के लिए सुझाव दिया जाता है। तीसरा, व्यक्तित्व। 20वीं शताब्दी के पूर्वाद में शिक्षणार्थियों को मनोवैज्ञानिक और भौतिक शिक्षिक अभिरुचियों के व्यक्तित्व अध्ययन का क्षेत्र बढ़ चुका था। आरंभ के अध्ययन उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के क्रियाविधि से संबंधित थे। धीरे धीरे व्यक्तित्व अभिक्षमताओं एवं विशिष्ट योग्यताओं के क्षेत्र में अध्ययनों के प्रमाण उपलब्ध होने लगे। मनोवैज्ञान और विद्यालय कर्मचारियों द्वारा व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत शिक्षार्थी का दूसरों के साथ संबंध के क्षेत्र में अध्ययन आरंभ हुआ। व्यक्तिशील गुणों के मूल्यांकन के क्षेत्र में मनोविज्ञान की रुचियां बढ़ीं, जिनके आधार पर शिक्षार्थियों की उनको स्वयं के विकास के अथवा व्यवहार के सामाजिक रचनात्मक प्रतिमानों की उपलब्धियों के संदर्भ में भविष्यवाणी होने लगी। व्यक्तित्व शब्द सामान्यतः व्यक्ति के शारीरिक प्रदर्शन, बोलचाल या रहन सहन का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ व्यक्तियों के लिए व्यक्ति का सामान्य संबंध प्राणी के जन्मजात विशेषताओं से रहता है, जिसका प्रदर्शन उसकी सभी क्रियाओं में सम्मिलित रहता है। जन्मजात विशेष यह पर्वतीय प्रभावों में पूर्णता मुक्त रहता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति और व्यक्तित्व समानार्थी शब्द हैं। कुछ अन्य लोग व्यक्ति को व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंध मानते हैं जिनका प्रदर्शन वह विशिष्ट परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में करता है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के परसेनियर शब्द से मानी जाती है, जिसका सामान्य अर्थ ध्वनि करने से संबंधित है। आरंभ में ये शब्द वेश बदलते हुए एक व्यक्ति के आवाज के लिए प्रयुक्त होता था। अधिकतर नाटकों इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता था, किंतु आजकल व्यक्तित्व का अर्थ अत्यंत व्यापक हो चुका है। इसमें बहुत से मानवीय गुण सन्निहित एवं संगठित हो चुके हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व को विभिन्न रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, किंतु यहाँ उसकी विशद व्याख्या अपेक्षित नहीं है। हम केवल ऑल्पोर्ट की परिभाषा प्रस्तुत करेंगे। व्यक्ति व्यक्तित्व के उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के उसके अपूर्व संतुलन को स्थापित करता है। व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की विवेचना से हम उसके सभी पहलुओं से परिचित हो जाएंगे। अरस्तु यहाँ उनका संक्षिप्त वर्णन करना समीचीन होगा। व्यक्तित्व के वर्गीकरण के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। स्वभावों पर आधारित व्यक्ति का वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स 400 ईसा पूर्व और गैलेन 150 ईसा पूर्व ने व्यक्ति के निम्न चार स्वभावों के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की है। पहला, क मंद, वे लोग जो निर्बल और निरुत्तेजित होते हैं। ख खिन, वे लोग जो निराशावादी होते हैं। ग क्रोधी, वे लोग जो शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं। घ उत्साही, वे लोग जो बहुत शीघ्र ही कार्य करते हैं और सदैव प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। शारीरिक संरचनाओं पर आधारित वर्गीकरण कैसमर के अनुसार व्यक्तियों का वर्गीकरण उनके चार शारीरिक संरचनाओं के आधार पर किया जा सकता है। पहला, पुष्टकाय, ऐसे व्यक्ति जो शक्तिमान होते हैं और उनमें पेशीय कौशल होता है तथा वे इच्छित समायोजन करने में समर्थ रहते हैं। दूसरा, लंबकाय, ऐसे व्यक्ति लंबे और दुर्बल होते हैं। वे दूसरों की निंदा करते हैं किंतु अपनी निंदा के प्रति सजग रहते हैं। तीसरा, गोलकाय, ऐसे व्यक्ति जो लंबे, छोटे और मजबूत होते हैं। ये दूसरों से सरलतापूर्वक अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। चौथा, बेडोल, ऐसे व्यक्ति सामान्य असामान्य विशेषताओं से युक्त होते हैं। शारीरिक विशेषताओं पर आधारित व्यक्तित्व विभाजन सेल्डन ने व्यक्ति के शारीरिक गुणों के आधार पर निम्न तीन व्यक्ति प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला, गोलाकार, ऐसे व्यक्ति जो कोमल और कद में छोटे रहते हैं। इनका व्यवहार उनकी आंतों के आंतरिक शक्तिशाली पाचन पर निर्भर करता है। दूसरा, आयतकार, ऐसे व्यक्ति पूर्णतः सुसंगठित होते हैं। इनका शरीर भारी एवं हष्टपुष्ट होता है, किंतु त्वचा पतली एवं चिकनी होती है। लंबाकार, ऐसे व्यक्ति शक्तिहीन एवं शीघ्र उत्तेजित होने वाले होते हैं। अपने बाहरे प्रदर्शन के प्रति ज्यादा सक्रिय रहते हैं। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखता के आधार पर वर्गीकरण युग के अंत में व्यक्ति की अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है। इसका यह विभाजन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उचित माना जाता है। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी व्यक्ति स्वयं में अपनी रुचि रखते हैं, कम बोलने वाले, लज्जाशील तथा आज्ञाकारी होते हैं तथा शीघ्र ही घबरा जाते हैं और इनके अंदर लचीलेपन का अभाव होता है। ऐसे व्यक्ति आत्मचिंतन करते रहते हैं, अपने मनोभाव को अपने तक ही सीमित रखते हैं तथा लोकप्रिय नहीं हो पाते। ये स्वभाव में संकोची एवं संचेत रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे लेखक हो सकते हैं किंतु अच्छे वक्ता नहीं हो सकते। अपने विचारों को वास्तविकता के अनुकूल बनाने में रुचि रखने बल्कि वास्तविकता को अपने स्वभाव अनुसार मोड़ने का प्रयत्न करते हैं। वही मूर्खी बहु जगत के रूप रुचि रखने वाले व्यक्तियों को इस श्रेणी में रखा जाता है। इन व्यक्तियों में कार्य करने की दृढ़ इच्छा होती है। ये बहादुरी वाले कार्यों में रुचि रखते हैं। इनका स्वभाव शासन करने वाला होता है। आने वाली परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं। ये आक्रामक, अहमवादी, अनियंत्रित, चिंता मुक्त एवं धारा प्रवाह बोलने वाले तथा दूसरों से शीघ्र ही संपर्क स्थापित करने वाले होते हैं। उन गुणों के प्रति सजग रहते हैं जिन्हें संसार में प्रशंसा की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति वातावरण के प्रभाव से शीघ्र प्रभावित होते हैं। ये अपने को वातावरण के अनुरूप समायोजन करने में समर्थ होते हैं। इनका ध्यान सदैव बाहर समाज की ओर लगा रहता है। चौथा, परिपक्वन। शिक्षण और परिपक्वन का आपस में घनिष्ठ संबंध है। परिपक्वन शिक्षण से स्वतंत्र होता है किंतु शिक्षण बहुत हद तक परिपक्वता पर निर्भर करता है। इन दोनों के सामंजस्य से व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमान का निर्माण होता है। यद्यपि परिपक्वन का संबंध जीवाश्मों से होता है जबकि शिक्षण प्रतिमान वातावरणीय परिस्थितियों पर अधिक निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति व्यवहार प्रतिमान विकसित या परिपक्व होता है तो उसमें शुद्धता, गति, मजबूती और शक्ति में से किसी एक का कई तत्वों का समावेश हो जाता है। इन चारों तत्वों का एक विशेष भागों में उपस्थित किसी भी व्यवहार के लिए आवश्यक है। फिर भी व्यवहार की विशिष्टता के अनुरूप इनकी मात्रा में अंतर रहता है। जैसे प्याजों ने बजाने के लिए शुद्धता और गति आवश्यक है जबकि इसके लिए शक्ति या मजबूती के गुण विशेष आवश्यक नहीं होते। इन चारों तत्वों के स्वामित्व के संदर्भ में व्यक्तियों में ही विभिन्नता पाई जाती है तथा कुछ व्यक्ति स्वभाव में मजबूत होते हैं किंतु उनके कार्यों में शुद्धता और गति का अभाव होता है। कुछ व्यक्तियों का व्यवहार अत्यंत परिशुद्ध होता है किंतु उनमें गति नहीं होती। परिपक्वन और शिक्षण के आपसी सहसंबंध निर्धारित करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। एक प्रयोग में दो जुड़वा भाइयों में से एक भाई को उसके प्रारंभिक उम्र में ही किसी कार्य का अत्यधिक प्रशिक्षण दिया गया। दूसरे भाई को कुछ समय बाद परीक्षण के पूर्व सीमित प्रशिक्षण दिया गया। परिपक्वन के अवस्था के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए दोनों बच्चों से वही शिक्षण कार्य संपादित कराया गया। दोनों बच्चों के शिक्षण की मात्रा की तुलना करने पर यह पाया गया कि कुछ परिपक्वता हासिल कर लेने के बाद जिस बच्चे को सीमित प्रशिक्षण दिया गया था उसका निष्पादन अपरिपक्व तथा अत्यधिक प्रशिक्षित बच्चे की तुलना में सराहनीय था। गेरेल और थॉमसन ने अपने प्रयोग में समान आकृति वाले जुड़वा बच्चों टी और सी के शिक्षण कार्य पर परिपक्वन के प्रभाव का अध्ययन किया। उन जन्म से 46वें सप्ताह की उम्र को टी को सीढ़ी चढ़ने पर 6 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। 52वें सप्ताह की उम्र में वह 25 सेकंड में सीढ़ी चढ़ना सीख गया। 53वें सप्ताह की उम्र में सी को उसी कार्य को 2 सप्ताह तक प्रशिक्षण दिया गया। वह 55वें सप्ताह में ही मात्र 10 सेकंड में सीढ़ी चढ़ गई। इस प्रकार सीढ़ी चढ़ने का उसका परिपक्वता पूर्ण लाभ मिला। मॉर्फेट और वॉसमैन ने विभिन्न मानसिक उम्र के बच्चों पर अध्ययन करते हुए पाया था कि 6 वर्ष के मानसिक आयु के 10% से कम ही बच्चे पढ़ने में संतोषजनक उन्नति का प्रदर्शन कर सके, जबकि 7 वर्ष की मानसिक उम्र के 70% से अधिक बच्चे संतोषजनक उन्नति का प्रदर्शन किए थे। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे परिणामों की व्याख्या मानसिक परिपक्वन के आधार पर की थी। उपयुक्त प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि परिपक्वता एक जैविक अस्वस्थ है। बच्चों के स्कूल उपलब्धियों में इसके योगदान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 5वां, शिक्षण अभिक्षमता। अपरिपक्व बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि अच्छी न होने के कई कारण हो सकते हैं। अपरिपक्व बच्चा आरंभ में कार्य करने की रूटीपूर्ण आदतों के सहारे सीखने का प्रयास करता है, बाद में उसे उन आदतों को सुधारने में कठिनाई होती है। यदि बच्चे में लेखन की अभिक्षमता का अभाव रहता है और उसे लिखने की सामग्री प्रस्तुत की जाती है तो संभवतः उसका निष्पादन प्रभावित होगा। अच्छे निष्पादन के लिए परिपक्वता के साथ साथ बच्चे के लिए नियमित पाठ सामग्री यदि 5 वर्ष के मानसिक उम्र के बच्चे को दी जाती है तो उसका निष्पादन संतोषजनक नहीं होगा। कठिन शिक्षण कार्य के निष्पादन के लिए बच्चे में उस कार्य को संपादित करने के यथोचित अभिक्षमता अपेक्षित होगी। कम बुद्धि उपलब्धि वाले बच्चों के संदर्भ में यह भविष्यवाणी करना कि वह सभी प्रकार के शिक्षण के लिए अनुपयुक्त हैं भ्रांतिपूर्ण होगा, क्योंकि कम बुद्धि उपलब्धि वाले बालक अमूर्त शिक्षण में कमजोर होते हैं। शिक्षण सामग्री में परिवर्तन होने पर उनके निष्पादन में विस्तार से सुधार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसकी शिक्षण अभिक्षमता का परीक्षण करके उसके अनुरूप विषय सामग्री उपलब्ध कराए जाने पर संभव है कि वह अच्छा निष्पादन करे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बालकों की उपलब्धि प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत उनकी शिक्षण अभिक्षमता को सम्मिलित करना आवश्यक है। ख, शिक्षण की प्रेरणा, द मोटिवेशन ऑफ लर्निंग। प्रेरणा, मानव अभिप्रेरकों को समझने के लिए सभी सामान्य मनुष्यों में विद्यमान उनकी आरंभिक आवश्यकताओं की जानकारी आवश्यक होती है। विकास क्रम में मानव का संपूर्ण व्यवहार उसकी आवश्यकताओं द्वारा प्रभावित होते हैं, जो उसके जैविक क्रियाओं में एक शक्ति के रूप में कार्य करती रहती है। उदाहरणतः जब कोई व्यक्ति भूखा रहता है तो उसे भोजन की आवश्यकता महसूस होती है और वह उसकी तलाश करता है। यदि व्यक्ति भूखा नहीं होता तो उसे भोजन तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति में भूख एक प्रेरक के रूप में व्यक्ति को खाना तलाश करने की स्फूर्ति प्रदान करती है। मानव जीवन के बहुत से सामाजिक कार्य शारीरिक अभिप्रेरकों पर निर्भर करते हैं। शारीरिक या जैविक अभिप्रेरक सामाजिक वातावरण से प्रभावित होकर सामाजिक अभिप्रेरकों के रूप में विकसित हो जाते हैं। यह हमारा मुख्य उद्देश्य उन अभिप्रेरकों का संक्षिप्त वर्णन करना है जो विकास क्रम में बालकों की स्कूल उपलब्धियों की प्रभावित करते हैं। बचपन के सापेक्षिक सामान्य व्यवहार, अंतर्नोद एवं बालकों के परिपक्वता अनुभवों के अनुरूप दिनों दिन जटिल होते जाते हैं। बच्चों की शिक्षण व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में इन प्रेरकों की जानकारी सभी शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। ये प्रेरक शिक्षण के आवश्यक तत्व हैं। प्रेरक शिक्षार्थी को शिक्षण क्रियाओं के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि शिक्षक आरंभिक स्कूल के एक बच्चे के कार्य की प्रशंसा करता है या अन्य कोई पुरस्कार देता है तो बच्चा अच्छे निष्पादन के लिए उद्दीपित होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वह अन्य प्रेरक उसके शिक्षण को क्रियाशील बनाते हैं। पूर्वावस्था तक बाह्य पुरस्कार शिक्षार्थी के लिए शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रभावित करते हैं, जबकि कुछ दूसरे प्रेरक जो व्यक्तिगत हितों से संबंधित होते हैं अधिक क्रियाशील रहते हैं। उदाहरणतः एक युवक उन विषयों के प्रति अपना विशिष्ट ध्यान देता है जिसे वह व्यवहारिक और जीवन मूल्यों की प्राप्ति में सहायक समझता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के चयन के लिए प्रेरक चयनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरणतः एक समाचार पत्र का तात्पर्य होता है विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न वस्तुओं का तत्कालीन विवेचन। एक युवक सर्वप्रथम उस पृष्ठ को पढ़ता है जिस पर खेल समाचार होते हैं, जबकि बूढ़े व्यक्ति को सर्वाधिक रुचि व्यापार भाव को पृष्ठ पे पढ़ने में होती है। औरतों का पन्ना माताओं को ध्यान आकृष्ट करता है, जबकि 8 से 10 साल के बच्चों की सर्वाधिक कॉमिक्स पढ़ने की हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी लोगों की यह चयनात्मक वरीयता उनकी तत्कालिक रुचियों पर आधारित होती है। ये रुचियां प्रेरकों के रूप में उन्हें वैसा करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। अभिप्रेरक केवल उन्हीं व्यवहारों का चयन नहीं करते जिन्हें हम करते हैं, बल्कि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के अभिप्रेरक केवल उन्हीं व्यवहारों का चयन नहीं करते जिन्हें हम करते हैं बल्कि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के चयन में भी सहयोग करते हैं। एक शिक्षार्थी अपना गृह कार्य किसी विशिष्ट क्रम में संपादित करता है, दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे क्रम में वही कार्य पूर्ण करता है। किसी समस्या के समाधान में एक व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं या वास्तविक प्रतिक्रिया व्यक्ति की अपनी रुचि के अनुरूप चुनी जाती है। उदाहरणतः कुछ विद्यार्थी अपना गृह अध्ययन कठिन सामग्रियों से आरंभ करते हैं, जबकि दूसरे सर्वाधिक सरल सामग्रियों से अपने गृह अध्ययन की शुरुआत करते हैं। प्रेरक व्यवहार निर्देशित करते हैं। अभिप्रेरक एक महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले सभी व्यवहारों को निर्देशित करते हैं। शिक्षार्थी को कब क्या पढ़ना चाहिए अभिप्रेरकों को इस प्रक्रिया में उसकी सहायता करते हैं। प्रेरणा की सार्थकता। प्रेरणा शिक्षण में अभिरुचि की जागरूकता से संबंधित है। शिक्षक सर्वदा उन उद्दीपकों की खोज के प्रति सतर्क रहता है जो शिक्षार्थी के अभिरुचि को किसी विषय विशेष के प्रति चिरस्थायी रख सके। शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न उपागमों जो शिक्षण कार्यविधियों के अभिन्न अंग हैं एक प्रभावशाली प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक नई शिक्षण सामग्री के तथ्यों को शिक्षार्थियों के उन पुरानुभवों से जोड़ने का प्रयास करता है जिससे वे पूर्व परिचित होते हैं। इस प्रविधि द्वारा शिक्षण में उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। शिक्षणार्थियों में अस्थायी अभिरुचि पैदा करना ही पर्याप्त नहीं होता, विषय सामग्री के प्रति उत्पन्न उनकी अभिरुचि को लक्ष्य प्राप्ति तक क्रियाशील रखना चाहिए जो उसे आगामी शिक्षण के लिए पूर्व अनुभव के रूप में अभिप्रेरित कर सकें। इस कार्य में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान अपेक्षित है। शिक्षक एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। शिक्षण में प्रेरणा तभी तक प्रभाव रहती होती है जब तक वह शिक्षार्थी में मानसिक झुकाव का निर्माण करती है, अन्यथा कभी कभी यह निर्धारक शक्ति की जगह विध्वंस शक्ति का कार्य करती है। अवधान और अभिरुचि। किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने का तात्पर्य उस वस्तु के प्रति जीव की मानसिक क्रियाशीलता से है। ध्यान किसी वस्तु, व्यक्ति या उस जीव के स्वयं के विचारों एवं संवेगों के प्रति निर्देशित होता है। किसी विचार या आदर्श के प्रति चिंतन या किसी आवाज के प्रति सतर्कता से वातावरण में विद्वान किसी चयनित उद्दीपक के प्रति जीव में चिंतन प्रक्रिया का आरंभ करना उस वस्तु के प्रति उसके अवधान का घोतक होता है। जिन उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति अपना अवधान केंद्रित करता है वे उम्र, अभिरुचि, अभिवृत्ति, प्रशिक्षण और अमूर्त चिंतन की योग्यता जैसे तत्वों पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति एक समय में किसी विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति ही अपना ध्यान केंद्रित करता है। वातावरण में विद्यमान अन्य उद्दीपकों से उसका ध्यान उद्दीपित नहीं होता। वह परिवर्तनशील असामान्य आकार की वस्तु, वातावरण में विद्यमान अन्य उद्दीपकों से भिन्न तीक्ष्णता वाले उद्दीपक किसी गतिशील वस्तु या किसी अन्य असामान्य वस्तु के प्रति ही अपना अवधान केंद्रित करता है। अभिरुचि और अवधान से संबंधित इन कारकों पर व्यक्ति के शिक्षण की अभिप्रेरणा आधारित हो सकती है। अविच्छिन्न प्रेरणा की आवश्यकता, किसी शिक्षण सामग्री के प्रति शिक्षणार्थी को एकाग्रित करने के लिए अविच्छिन्न अभिप्रेरणा आवश्यक होती है। कक्षा में एक बच्चे का ध्यान एक वस्तु से दूसरे वस्तु के प्रति आकर्षित रहता है। सफल शिक्षण के माध्यम से शिक्षणार्थी के अवधान को कक्षा वातावरण में संपादित होने वाले व्याख्यानों के प्रति केंद्रित किया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बालकों का अवधान एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक के प्रति परिवर्तित होता रहता है। कक्षा में बहुत से उद्दीपक स्थितियां विद्यमान रहती हैं। यदि सभी स्थितियां शिक्षणार्थी के ध्यान को आकर्षित करना चाहती हैं, यहां उसे शिक्षक की सहायता से अपेक्षित होती हैं, जिसके माध्यम से वह अपना ध्यान विषय वस्तु के प्रति केंद्रित कर सके। शिक्षक विषय सामग्री को अत्यधिक उद्दीपनशील और सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सके शिक्षणार्थी के मानसिक क्रियाओं को आकर्षित करता है। प्रतिस्पर्धा पर महत्व, शिक्षार्थियों के शिक्षण निष्पादन को उन्नत बनाने के लिए शिक्षक उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करने में सहायक हो सकते हैं। यह प्रतिस्पर्धा दो रूपों में हो सकती है, पहला दूसरे व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा, दूसरा स्वयं अपने पूर्व अभिलेखों से प्रतिस्पर्धा। यदि शिक्षार्थी समान मानसिक योग्यता और निष्पादन शक्ति वाले होते हैं तो उनके बीच प्रतिस्पर्धा अधिक उद्दीपनशील होते हैं। यदि प्रतिस्पर्धा ऐसे दो व्यक्तियों या समूहों के बीच होती है जिनमें एक अधिक योग्य होता है, दूसरा अपेक्षाकृत कम योग्यता से युक्त होता है, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। लूज 1930 ने बच्चों के प्रतिस्पर्धा पर प्रयोग किया था। अपने परिणाम में लूज ने पाया कि 47% विद्यार्थियों ने प्रतिस्पर्धा की भावना के कारण अपने निष्पादन में प्रदर्शित किया। हरलॉक ने अपने प्रयोग में पाया था कि बच्चों का निष्पादन उस समय अच्छा था जिसे प्रतिस्पर्धा का ज्ञान करा गया था। प्रतिस्पर्धा के साथ ही सहयोग भी शिक्षार्थियों के निष्पादन को उन्नतशील बनाने के अभिप्रेरणा का कार्य करते हैं। प्रशंसा तथा आरोप, प्रशंसा तथा आरोप का उद्दीपन जब शिक्षक द्वारा प्रयुक्त होता है तो उसका अत्यंत प्रभावी परिणाम होता है। प्रशंसा औसत और कमजोर बालकों को उत्तेजित करती है। बालिकाओं के ऊपर प्रशंसा का अधिक प्रभाव पड़ता है। चेह द्वारा किए गए प्रयोग में यह परिणाम मिला कि आरोप प्रशंसा से अधिक प्रभावशील प्रेरक हैं, किंतु हारलॉक ने अपने अध्ययनों में पाया था कि प्रशंसा सर्वाधिक शक्तिशाली अभिप्रेरक है। प्रशंसा और आरोप, इन दोनों अभिप्रेरणाओं को कौन से अधिक शक्तिशाली है, यह शिक्षक की कुशलता पर निर्भर करती है। एक कुशल अध्यापक दोनों का उपयुक्त अवसर पर प्रयोग करके शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने का प्रयास करती है। पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड अभिप्रेरकों प्रशंसा और निंदा के समान ही बालक के शैक्षणिक निष्पादनों को प्रभावित करते हैं। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को आर्थिक एवं सामग्रिक पुरस्कार देकर अच्छे निष्पादन का परिणाम कई अध्ययनों में पाया गया है। ल्यूम्बा 1933, नायर 1935, थार्नाइड 1933, प्रॉस 1941 एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने चिन्ह पुरस्कार को अधिक प्रभावशील प्रेरक के रूप में पाया है। दंड का प्रयोग शिक्षणार्थियों के भविष्य के निष्पादनों में अपेक्षित सुधार लाने हेतु किया जाता है। वास्तव में अभिप्रेरणा के साथ साथ दंड बालकों के मार्गदर्शक की शैक्षिक एवं सर्वाधिक उपयोग पद्धति है। वह भय पर आधारित होता है। भय एक प्रभावपादक उत्तेजक स्थिति है। इसके कारण असाधारण प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। परिणामों का ज्ञान। यदि शिक्षार्थियों के उसके द्वारा किए गए प्रगति से अवगत कराया गया तो उन्हें अधिक प्रयत्न करने की प्रेरणा मिलती है। परिणामों की जानकारी बालकों को और अच्छे निष्पादन के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। साइमंड एवं चेज ने अपने अध्ययन में पाया था कि बच्चे ने जिस समूह को उनके आंशिक उन्नति से अवगत कराया गया था वह समूह का निष्पादन नियंत्रित समूह की तुलना में अधिक अच्छा था। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जिन परिणामों से बालक परिचित होता है यदि वह उसके उन्नति के घोतक नहीं होते तो वह परिणाम उनके आगामी निष्पादनों को प्रभावित नहीं कर पाते। असफलता की पूर्ण जानकारी शिक्षण निष्पादन को घटाती है। सफलता और असफलता। सफलता और असफलता भी अभिप्रेरक के रूप में बालकों के निष्पादन को प्रभावित करती है। शिक्षण की सफलता बालकों के लक्ष्य प्राप्ति, दूसरों द्वारा प्रशंसित होने, उच्च ग्रेड प्राप्त होने अथवा सामग्रिक पुरस्कार अर्जित करने के रूप में अभिव्यक्त होती है। हॉर्लॉक ने 4 समूह के बच्चों पर अध्ययन करके यह परिणाम प्राप्त किया कि उस समूह का निष्पादन सर्वाधिक अच्छा था जिसे अच्छे कार्य के लिए प्रशंसित किया गया था। उस समूह का निष्पादन सर्वाधिक बुरा था जिसकी ना तो प्रशंसा की गई थी और ना ही किसी प्रकार का आरोप लगाया गया था। अध्ययन की विधि, मेथड ऑफ स्टडी। अध्ययन विधि से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी विषय वस्तु को याद करने में कौन सी विधि का उपयोग करता है। सीखने अथवा याद करने की प्रमुख विधियों में स्मरग एवं खंड विधि, सांतर एवं निरंतर विधि एवं सस्वर पाठ विधि इत्यादि प्रमुख है। इन विधियों की सापेक्षिक अथवा तुलनात्मक महत्व की चर्चा करना यहाँ संभव नहीं है। हम केवल यह कह सकते हैं कि प्रत्येक विधि की उपयोगिता है। शिक्षार्थी की विशेषताएं, विषय वस्तु इत्यादि द्वारा यह निर्धारित होता है कि कौन सी विधि अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। यदि विद्यार्थी उचित विधि का चयन करता है तो शैक्षणिक उपलब्धि अधिक हो सकती है, अन्यथा वह शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ सकता है। संवेग, इमोशन। विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया है कि मध्यम संवेग अभिप्रेरणा से बालकों के शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रभावित करता है, जबकि तीव्र संवेग बाधक होता है। कॉटर ने 6 एवं 7 कक्षा के बालकों पर एक प्रयोग किया था जिसमें कुछ चित्रों के साथ प्रसन्नतादायक, अप्रसन्नतादायक तथा मिले जुले शब्दों का साहचर्य स्थापित करना था। परिणाम में यह पाया गया कि प्रशंसादायक शब्दों के साथ चित्रों का साहचर्य स्थापित करने में 2200 रूटियाँ, अप्रशंसादायक के साथ 2724 रूटियाँ एवं अन्य मिश्रित शब्दों के साथ 3106 रूटियाँ हुई। इस प्रकार संवेग के दोनों पहलू बच्चे के निष्पादन को प्रभावित किए थे। पैट्रिक ने पुड़ों की अवस्था पर संवेग का प्रभाव का अध्ययन किया था, जिसमें पुड़ों को समस्या पक्ष से बाहर निकलना था। उनकी प्रतिक्रिया की एक गुणात्मक स्केल द्वारा अभिसूचित किया गया था, ठंडे पानी, विद्युत आघात एवं उच्च शोर द्वारा उनमें संवेग उत्पन्न कराया गया था। परिणाम में यह पाया गया कि संवेगात्मक अनुभूति के दौरान अ गुण वाले व्यवहार में कमी आई, जबकि य गुण वाले व्यवहारों में बढ़ोतरी हुई।